प्रकृति पुरुषमतापी विद्यनादि उपासी, इसमें प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि है। प्रकृति कैसे अनित्य हुई और पुरुष कैसे नित्य हुआ?
बहुत ठीक है।
प्रकृति तो ये भूते प्रकृति दान गुणा कारणम गुणसंग सतसत योनिजन,
ठीक है।
वो कैसे भोग करता है, प्रकृति विकृति क्या है, और प्रकृति और विकृति और पुरुष तो अलग अलग
पुरुष, ठीक है। बस क्या मेरा जो भेज, कोई बात नहीं। फिर पूछ लेना, मैं बात कहूँ तो मैं पूरी नहीं कर पाता हूँ, इसमें फिर शंका हो तो फिर पूछ लेना, इस वजह यहीं बैठ जाओ। आप पूछते हैं गीता में प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि, ये 13वां अध्याय का 19वां श्लोक है, उसमें ये बात बताई। तो प्रकृति पुरुष अनादि है तो फिर ये नित्य हुए, और ऐसे कहते हैं कि प्रकृति शांत हो जाती है, वेदांत में इनको अनादि बताया है 6 को, परंतु प्रकृति और संसार को अनादि होकर शांत बताया है, तो फिर प्रकृति अनादि तो अनंत रहेगी, तो फिर भगवान ही रहेंगे, प्रकृति फिर नष्ट हो जाएगी। तो एक बात बताओ, मार्मिक बात गीता की, गीता में प्रकृति को अनादि कहा है, परंतु ना तो अनंत कहा है ना शांत कहा है, गीता भर में प्रकृति अनादि है ये तो कहा, मतलब अनादि है कि शांत है, अनादि होते हुए अंत वाली है प्रकृति अथवा अनंत है प्रकृति, ये बात कही नहीं है गीता में, कही हो तो वही बताओ। गीता जानने वाले कई भाई बैठे हैं यहाँ पर, नहीं कहा है, क्यों नहीं कहा? अनादि अनंत कहना चाहिए अथवा अनादि शांत कहना चाहिए, क्यों नहीं कहा? कि गीता में भक्ति और ज्ञान का दोनों का वर्णन है, तो भक्ति में प्रकृति अनादि और अनंत मानी है, और ज्ञान में अनादि और शांत मानी है, तो अनादि तो सबके लिए है, अनंत और शांत सबके लिए नहीं है। किसी में शांत है तो भगवान चुप रहे इस विषय में, तो दोनों का इसमें सिद्धांत वर्णन है। इस वास्ते अनंत शांत कह देते तो फिर भक्ति का वर्णन नहीं होता, अनंत कह देते तो भक्ति का वर्णन नहीं होता, शांत कह देते तो ज्ञान का वर्णन होता, अनंत कह देते तो ज्ञान का वर्णन नहीं होता। इस वास्ते खुली रखी है, अंत होगा कि नहीं, इसको खुली रखा, शांत नहीं बताया है, एक बात। अब दूसरी बात कि प्रकृति और पुरुष क्या है और कैसे वो कर्म करवाती है, क्या करवाती है, बहुत बढ़िया विषय है। अच्छा, मेरे कहने पर भी फिर शंका करते रहे आप, जब तक आपका समाधान न हो मेरा पिंड न छोड़े। नारायण नारायण नारायण। सातवें अध्याय के आरंभ में भगवान ने कहा कि मैं वो विज्ञान से ज्ञान कहूंगा और मेरे समग्र रूप का वर्णन करूंगा। समग्र रूप का वर्णन करने का इससे पहले आया नहीं है, 6 अध्यायों में कहीं समग्र रूप का वर्णन, या समग्र शब्द एक बार आया है तो समग्र कर्म का विषय में, शुभाशुभ फले एवं मोक्ष रे, ऐसे ही यज्ञाय आचरत कर्म समग्रम प्रविलीयते, कर्म संपूर्ण लीन हो जाते वहां समग्र बताया है, और ईश्वर के लिए समग्र बुद्ध साथ में नहीं आया है, विराट रूप समग्र पद आया है, और समग्र पद आया ही नहीं 6 अध्यायों में, एक बार ही आया है। तो यहाँ पर कहते हैं समग्र मैया शक्त मना पार्थ योगं युंजन मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यदा ज्ञासिष्ट सुनो, ये पहला कहा। ज्ञानम तेहम सभी ज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषत, बाकी नहीं रखूंगा, पूरा कहूंगा। यद ज्ञातवा नेह भूय ज्ञातव्यमवशिष्यते, जिसके जानने के बाद फिर ज्ञातव्य जानने का विषय कोई नहीं रहेगा, ऐसा कहकर 3रा श्लोक कहते हैं कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धे यतताम सिद्धानाम कश्चित माम वेति तत्वतः, तो मनुष्यों के हजारों में कोई एक सिद्धि के लिए यत्न करता है, और यत्न करने वाले सिद्धों में भी कोई एक ही मेरे को जानते हैं। यतताम भी सिद्धानाम सिद्ध पद दिया है, जो परमात्म तत्व को प्राप्त हो जाए, सिद्ध पुरुष हो जाए, उनमें भी मेरे को कोई एक ही तत्व से जानता है, सबके सब सिद्ध नहीं जानते, तो उनसे साधकों को कह सकते हैं, और सिद्ध शब्द तो सिद्ध आया है, तो कोई एक ही जानता है तो सब सिद्ध मुक्त नहीं हुए, सब सिद्ध नहीं जानते, कोई एक ही जानता है। जैसे मनुष्य में कोई एक साधन करता है, एक सिद्ध में कोई एक मेरु तत्व से जानता है। क्यों कहा भगवान ने? तो इसे कहने का भगवान का ये तात्पर्य नहीं है कि सिद्ध जन्म मरण में आते हैं वे मुक्त नहीं होते, वे जानते नहीं, इसमें तात्पर्य नहीं है। तात्पर्य है कि मैं कहता हूँ, समग्र रूप का मैं वर्णन करता हूँ, तू और जगह पूछना चाहे तो मेरे संपूर्ण रूप को सब नहीं जानते हैं, इस वास्ते मैं कहता हूँ, दूसरा ये बता नहीं सकेगा, इस वास्ते तीसरा श्लोक कहा है। तीसरा श्लोक ये नहीं भी शुद्ध मुक्त नहीं होते, ऋतुज मुक्त होते, ये विषय नहीं है। मैं कहता हूँ ज्ञानम ते हम सब विज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः, मैं कहता हूँ और मैं आसक्त मना पार्थ है योग इंजन मेरे से आसक्त हो जाए, मेरे आश्रित हो जाए, मेरे में श्रद्धा करे और मेरे कहने के अनुसार करेगा तो समग्र रूप तू जान जाएगा। तो ये जानने की बात, मैं जैसे जानता हूँ वैसा कोई नहीं जानता। जो सिद्ध महात्मा पुरुष होते हैं वो परमात्म तत्व को प्राप्त होकर के जानते हैं, मैं अप्राप्त कभी था ही नहीं, मैं तो सब जानता ही हूँ। इस वास्ते मैं कहता हूँ समग्र रूप तू सुन, तो मेरे समान वक्ता तेरे को नहीं मिलेगा, इसमें तात्पर्य है। ये सिद्ध नहीं जानते, इसमें तात्पर्य इसका नहीं है। ज्ञानम ते हम सभी ज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः अशेषतः, और अगर भेद ज्ञातवा अन्य ज्ञातव्यम न अवशिष्यते, जिसके जानने के बाद फिर जानना बाकी रहेगा ही नहीं, तो शिष्यता से मैं कहूंगा और तू भी जानने से बाकी नहीं रहेगा, इस संपूर्णता को दूसरे आदमी नहीं कह सकता। इस विषय में ये श्लोक है। अब चौथे बैर पांचवे में भगवान आरंभ करते हैं। तो भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि रेवच अहंकार इति यमे भिन्ना प्रतिरष्टता अपरियम। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार, ये आठ प्रकार के भेदों वाली मेरी अपरा प्रकृति है। और इतस्तु अन्याम, इससे अन्य प्रकृति है वो परा प्रकृति है। अपरेम इतस्तु अन्याम प्रकृति विद्धि में पराम, कौन बना के जीव भूता महाबाहो ये दम धार्य तेज, जीव रूप से बनी हुई प्रकृति मेरी परा प्रकृति है, उत्कृष्ट प्रकृति है। और इसके लक्षण बताया, ये दम धार्यते जगत, जिस प्रकृति के द्वारा ही ये संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। अब देखो प्रकृति के द्वारा जो जीव रूप प्रकृति है उसके द्वारा जगत धारण किया जाता है, तो जगत का आधार जीव हुआ, ये दोष आ गया। एक जगत उसने धारण कर रखा है तो ये दोष नहीं आया है, ये गुण है विशेष। क्या गुण है? कि जिस जीव ने ही संसार को धारण कर रखा है, भगवान की दृष्टि में मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति, मेरे सिवाय कुछ है ही नहीं, अहम एव, भागवत में चतुश्लोक में अहम एव आसमाग्रे एवाग्रे नान्यत् सदसत् परम पश्चात अहम यदेच्छत् यो वशिष्ये सोऽस्मि अहम्, पहले मैं था पीछे भी मैं अंत में मैं ही रहूंगा, तो मेरे सिवाय कुछ है ही नहीं। तो भगवान की दृष्टि में भगवान अपना स्वरूप ही मानते हैं, और ज्ञानी के लिए वासुदेव सर्वम इति महात्मा सुदुर्लभ, तो ज्ञानी की दृष्टि में भी परमात्मा ही है। तो अज्ञानी ने ही संसार को धारण कर रखा है, संसार अज्ञानी की दृष्टि में ही है, ना भगवान की दृष्टि में है ना जीवन मुक्ति की दृष्टि में है। तो ये एकदम धार्यते जगत का तात्पर्य के जगत को धारण जीव ने ही किया है, जीव ने जगत माना है, ईश्वर की जगह इस जगत को मान लिया, जगत को सच्चा मान लिया, ईश्वर को न मान करके जगत का धारण किया इसने। इस बार से जगत से मुक्ति करने की इसी पर जिम्मेवारी है। अगर जगत हमारा बनाया होता तो जीव पर मुक्त होने की जिम्मेवारी नहीं होती, तो इसने जगत को धारण कर रहा है, इसमें तात्पर्य है। अब इसमें समझना ये है कि ये आठ प्रकार के भेदों वाली प्रकृति बताई, ये अपरा है, अपरा कहने का मानो जड़ है, और जीव रूप प्रकृति वो चेतन है। यहाँ प्रकृति कहा, इस बार जीव भूतम कहा। पंद्रहवे अध्याय में ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, ममई वांश मेरा ही अंश है ही साक्षात, तो ये परमात्मा का अंश है प्रकृति नहीं। ममई अंश एव से क्या किया, प्रकृति का निराकरण किया, ममेव अंश है, केवल मेरा अंश है, शुद्ध अंश। मैं अंश हो जीव लोके जीव भूत, तो पुल्लिंग इस बार जीव भूत या प्रकृति शब्द इस जीव भूत महाबोधारी थे जगत जीव भूत। महाराज कब से है के सनातन अनादि काल से है, ये जीव कब से पैदा हुआ है ऐसी आदि किसी शास्त्र नहीं बताई है। मेरी दृष्टि में, मेरे अध्ययन में, मेरे जानने में जीव अमुक दिन से पैदा हुआ ऐसा कहीं वर्णन नहीं आया है, किसी शास्त्र में भी ऐसा नहीं आया है। तो जीव भूत सनातन है ये, इस वास्ते भगवान कहते हैं मेरी प्रकृति है ये, जीव भी मेरी प्रकृति परा प्रकृति है और जड़ है ये अपरा प्रकृति है, तो मेरी प्रकृति है। ऐसे कहकर इधर योनि भूतानि सर्वाणी इति उपधारय, इससे जीव पैदा होते हैं। ये 13वां अध्याय में बताया है, याव संजायते किंचित स्थत्वम स्थावर जंगमम, स्थावर और जंगम दो तरह की सृष्टि होती है, चलने फिरने वाले और स्थिर रहने वाले। तो घास है, पौधे हैं, वृक्ष है, ये सब स्थावर है, लता आदि और पशु पक्षी मनुष्य ये सब जंगम है। तो चलने फिरने वाले और स्थावर सब पैदा होते हैं क्षेत्र क्षेत्र के संयोगात, क्षेत्र क्षेत्र संयोगात। तो क्षेत्र हुई अपरा प्रकृति, क्षेत्र हुआ क्षेत्र, अपरा प्रकृति क्षेत्र की हुआ परा प्रकृति। ये यहाँ बताया दियोनी सर्वभूतानि सर्वाणी सब भूत, तो सर्वाणी में अंतर स्थावर जंगम स्वेदज उद्भिज अंडज जरायुज चारों खानी आ जाती है, और स्वर्ग मर्त लोक के सब प्राणी आ जाते हैं, राक्षस असुर प्रेत भूत पिशाच कोई प्राणी बाकी नहीं रह गया। एतद् योनिनि भूतानि सर्वाणि, पंच बताया। ये 14वां अध्याय में कहा है कि मम योनिर महद ब्रह्म तस्मिन गर्भम ददामि, महद ब्रह्म योनि है, मैं भी जब प्रदा पिता हूँ तो पिता और माता के अंश से सब प्राणी पैदा होते हैं। तो प्रकृति और मेरे से पैदा हुआ, प्रकृति का अंश जो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर है या मेरा अंश स्वयं जीव है ममेव अंश, वो प्रकृति स्थानी कर सती मनस्थान इंद्रियाणी प्रकृति में स्थित, वो इनको अपनी मानता है। तो प्रकृति, प्रकृति के उत्पन्न होने वाले जो मनस्थानी इंद्रियाणी है ये तो प्रकृति स्थानी है, प्रकृति से उत्पन्न हुए प्रकृति में स्थित रहते हैं, और मेरा अंश मेरे में स्थित न रहकर प्रकृति के अंश को खींचता है। ये गलती हुई है, प्रकृति के अंश को छोड़ दे तो मुक्त हो जाए, इसने सकुत को धारण कर रखा है। तो मनुष्य स्थान प्रकृति स्थान इनको खींचता, अपन तो पकड़ता है ये, अगर ये प्रकृति के अंश को न पकड़े तो मुक्त हो जाएगा। पुरुष प्रकृति से ही भोगते, प्रकृति से होता ही वो भोगता है यार, करता है तो प्रकृति, प्रकृति क्रियमाणा नहीं गुणे अहंकार करता हूँ, प्रकृति के द्वारा क्रिया होती सब ही अहंकार से मोहित अंतकरण वाला मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है। 3rd अध्याय 18वें श्लोक में कहा भगवान ने, और तत्ववित्तु ये तो मूढ़ बताया, अहंकार विमूढ़ात्मक बताया, या विमूढ़ नहीं है। तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभाग यो गुणा गुणेशु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, गुण गुणों में वर्त रहे हैं, प्रकृति 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 क्रियमाणानी इंद्रियाणी इंद्रियार्थेषु, कई बार भगवान ने कहा इंद्रिया इंद्रिया में वर्त रही है, प्रकृति प्रकृति कर रही है, नान्यं गुणे व्य करता, गुण के सिवा अन्य करता नहीं है। अहंकार से मोहित अपने को कर्ता मान लेता है, कर्ता मान लेता है भोगता है, इसको जबरन होना ही पड़ता है, क्योंकि अपने किए हुए कर्म अपने को ही भोगने पड़ेंगे। तो कर्ता मान लेना ये मूर्खता है। 13वें अध्याय 29वें कहते हैं प्रकृति के वज कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः, प्रकृति के द्वारा ही सब क्रिया करते हैं, ऐसा देखता है अकर्तारम स पश्यति, वो अकर्तापन का अनुभव करता है, केवल प्रकृति के द्वारा क्रिया होती है, ऐसा अनुभव करने पर तो वो कर्ता नहीं बनता, तो कर्ता नहीं बनता तो भोगता भी नहीं बनता, तो भोगता नहीं बनता करते तो भोगते तो संसार इससे मुक्त हो जाता है। तो ये प्रकृति के द्वारा क्रिया होती है, तो क्रियाएं सब प्रकृति के द्वारा होती है। और यहाँ बताया क्षेत्र क्षेत्र के संयोगात, वहाँ कहते एक योनि एक क्षेत्र क्षेत्र के संयोग से, मम यो दिन बाद में इसमें भी बताया ये अहम पीजा पदा और उस सर्व को पैदा होते हैं, सर्व योनि सुकाम दे मूर्ति है संभवन दिया, संपूर्ण योनियों में जितनी मूर्तियां पैदा होती शरीर पैदा होते हैं, ताशा ब्रह्म योनि अहम बीज प्रदा पिता, वो प्रकृति जो योनि स्थान है मैं बीज प्रदा पिता के स्थान, संबंध से ही जन्म मरण होता है। 13वां अध्याय में साफ कहा कि यावत संजाय थे किंचित, वो सब का क्षेत्र से संयोग से होता है, तो क्षेत्र क्षेत्र कह दो, प्रकृति पुरुष कह दो, जड़ चेतन कह दो, परापरा प्रकृति कह दो, ये नाम अलग है पर इसके दोनों के संयोग से होता है। केवल जड़ में जन्म मरण नहीं होता, केवल चेतन में जन्म मरण नहीं होता, करता हुआ केवल शब्द आत्मा भी करता नहीं होता, प्रकृति केवल करता नहीं होती, इनके संयोग से ये कर्ता बनता है या संयोग से ही भोगता है, भोगता है। पुरुषा प्रकृतिस्थ तो ही भोगते, प्रकृतिजन गुणान प्रकृतिजन गुणों का भोग करता है तो प्रकृतिस्थ करता है, और प्रकृतिस्थ नहीं है तो सुख दुख का भोगता नहीं होता। पुरुषा सुख दुख का नाम भोगतृत्व हेतु, भोगतापन में हेतु होता है और प्रकृति से अलग होता है, तब सब दुख सुख है, क्योंकि स्वस्थ वो स्वस्थित हो गया तो सुख दुख का नाम भोगता नहीं होगा। जब प्रकृति में स्थित होता है तो सुख भोगता होता है, पर तो प्रकृति के संग से ही जन्म मरण होता है, प्रकृति के संग से ही भोगता बनता है, भोगता बनने से ही सुख दुख भोगी होता है, और उसमें स्थित होने से ही कर्तृत्व अपने को मान लेता है, कर्तृत्व भोक्तृत्व लागू हो जाता है, तो प्रकृति के साथ संबंध विच्छेद करने पर मुक्त हो जाता है। या एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृति से गुणेशा सर्वथा वर्तमानो भी नशे भूयो भी जायते। ये प्रकृति के द्वारा बताया, ये 23वां श्लोक है 13वें अध्याय का, तो वो बताते हैं कि ये सब प्रकृति के संबंध से जन्म होता है, प्रकृति के संबंध ये एवं वेत्ति पुरुषम और प्रकृति से गुणे से गुणों से प्रकृति और पुरुष अलग ऐसे जान जाता है, न से भूयो भी जाए थे फिर उसका जन्म नहीं होता, प्रकृति स्थित होने से कारण गुणों के संग होने से ही जन्म मरण होता है। तो प्रकृति से अपने को अलग होना है ये बात है, तो प्रकृति और पुरुष का विभिषण ऐसे आया है, और भी आया है पर मुख्य मुख्य बातें ये है। तो आप क्या क्या प्रश्न है, एक तो प्रकृति पुरुष का अनादि अनंत की बात बता दी ना, अनादि बताया दोनों सिद्धांतों के लिए, एक कह देते एक सिद्धांत हो तो दोनों सिद्धांत नहीं आते, गीता में कर्मों का वर्णन भी है और वेदांत का सिद्धांत का वर्णन भी है, भक्ति का वर्णन भी है, तो वो वर्ण भेद होता है। प्रकृति अनादि और अनंत, और अनंत शांत मानने से, अनादि मानने में किसी से प्रश्न नहीं होता भी।